रेडियो प्रस्तुत करता है कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता। एक श्रोता से बातचीत और उनकी पसंद के चंद फिल्मी गीत।
आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम में, जिसके लिए आप सभी करते हैं बेसब्री से इंतजार, जानने के लिए उस शख्सियत को जो आज आप सभी से रूबरू होने वाली है। भाई सप्ताह के श्रोता का नाम हम बताएंगे ही, बातें भी करवाएंगे, उनकी पसंद के गीत भी सुनवाएंगे, पर उससे पहले स्वीकार कीजिए मीनू सिंह का नमस्कार। 90.8 अरपा रेडियो पर आप सुन रहे हैं सप्ताह के श्रोता कार्यक्रम, और आज हमारे साथ हमारे श्रोता हैं ग्राम सावतपुर पोस्ट सरगांव जिला मुंगेली से ऋषि सेन जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका ऋषि सेन जी।
सभी रेडियो रसिक श्रोताओं को मेरा स्नेह भरा नमस्कार।
और कैसे हैं आप?
मैं बहुत बढ़िया मैम।
सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे ऋषि जी।
जी मैम, मैं सावतपुर पोस्ट ऑफिस सरगांव जिला मुंगेली छत्तीसगढ़ का निवासी हूं, और मैं एक कृषक हूं मैम। कृषक के साथ साथ साइकिल रिपेयरिंग का भी काम करता हूं। छोटा सा गांव है मेरा, 2500 जनसंख्या है, और सभी कृषि पर ही निर्भर है।
अपने परिवार के बारे में बताइए, कौन कौन है आपके परिवार में?
जी मैम, मैं संयुक्त परिवार है, 22 सदस्य हैं, अम्मा बाबू जी हैं, भाई भाभियां और बच्चे लोग भी हैं, भाई भतीजे भी हैं, मेरे खुद के बच्चे भी हैं।
हाँ, उन्हीं के बारे में तो जानना चाहते हैं, कौन कौन है, क्या क्या करता है आपके परिवार में, आपकी पत्नी का नाम क्या है, बच्चों का नाम क्या है, वो किस क्लास में पढ़ते हैं, बड़े हैं अगर छोटे हैं तो कितने छोटे हैं, ये सब हम जानना चाहते हैं।
मेरे बच्चे हैं मैम, 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां और 1 लड़के हैं। लड़के का नाम जितेश सेन, जो अभी 9th क्लास में एडमिशन लिया हुआ है, और छोटी बच्ची है कंचन, जो 5th क्लास में अभी है। सबसे छोटी है माही सेन, जो दामिनी सेन के नाम से भी जाने नाम है उसका, साल हम माही नाम बोलते हैं उसको, और वो अभी 1st क्लास में है मैम। धर्म पत्नी जी है नीरा सेन।
तो अपने बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए स्कूल आपके गांव में है?
जी मैम जी।
कहाँ तक का स्कूल है आपके गांव में?
मेरे गांव में मैम प्राइमरी स्कूल तक है, और मिडिल फिर नपुरा जाना पड़ता है 2 किलोमीटर दूर, और हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के लिए फिर 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है सरगांव।
अच्छा, तो आपका बेटा जो है वो सरगांव में आके पढ़ता है?
जी मैम।
और अभी तो कोरोना काल में स्कूल खुले नहीं है, तो बच्चे कैसे पढ़ाई कर रहे हैं?
ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं ना मैम, मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ते हैं। और जो छोटी बच्ची है मैम, वो उसको स्कूल तो खुल नहीं रहे हैं, लेकिन गांव में जो चौराहे में जो पढ़ाई जो बाहर शिक्षक भी आते हैं, और गांव के जो पढ़े लिखे हैं ना, उन लोग चौक चौराहे पर बैठ के पढ़ाते हैं।
अरे बहुत अच्छी बात है, मतलब वो सेल्फ सर्विस दे रहे हैं या टीचर्स ही आते हैं?
टीचर भी आते हैं लेकिन सेल्फ सर्विस भी है।
बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि छोटे बच्चों का जो रुझान है वो पढ़ाई में होना बहुत जरूरी है, और कोरोना काल में लगातार घर के अंदर रहते हुए और मोबाइल खेलते हुए उनका पढ़ाई की तरफ से थोड़ा सा रुझान कम हो रहा था। अच्छा, तो 2 बच्चे हैं तो मोबाइल भी 2-2 लेने पड़े होंगे?
नहीं मैम, एक ही मोबाइल है मेरे पास।
अच्छा, तो फिर वो बच्चे पढ़ते कैसे हैं अलग अलग?
मैं टीचर को बता दिया हूँ मेरे पास एक ही मोबाइल है, आप थोड़ा समय समय पर आपकी क्लास के लिए समय निकाल दे बता दीजिए मैम करके, तो बता देते हैं कि इतना टाइम मेरे क्लास लगेंगे तो इतना टाइम आप पढ़ा लेंगे।
अच्छा, सबके कोऑपरेशन से वो भी आपकी समस्याएं समझ रहे हैं और आप भी उनकी समस्याएं समझ रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। और बच्चे इस तरह से पढ़ रहे हैं, और ये सभी पूरे देश में गाँव के क्या शहर के सभी जगह की ये समस्या है कि इतने सारे मोबाइल तो होते नहीं, एंड्रॉइड मोबाइल काफी महंगे होते हैं, और बच्चे इस तरह से अपने। ऋषि सेन जी, हम जानना चाहते हैं आपकी हॉबी क्या है, शौक क्या है?
मैम मेरा शौक तो क्रिकेट खेलना देखना, और सबसे शौक मेरा रेडियो सुनना, ये मेरी बहुत बड़ी शौक है।
रेडियो के जरिए क्रिकेट का शौक हुआ या क्रिकेट के लिए रेडियो सुनना शुरू हुआ?
नहीं मैं पहले 18 साल की उम्र तक क्रिकेट खेलता रहा, 18 से 25 के लगभग, के बाद फिर मैं रेडियो की प्रति इतनी दीवानगी बढ़ गई कि मैं रेडियो क्रिकेट को छोड़ दिया, रेडियो ही सिर्फ सुनता हूँ, मेरे पास 2-3 सेट रेडियो है।
अच्छा, क्रिकेट में क्या पसंद था?
क्रिकेट में मैं आता मैं ऑलराउंडर था।
क्या बात है, और कौन सी जगह कहीं फील्डिंग करना पसंद था आपको?
मैम मैं विकेट कीपिंग करता था।
क्या बात है, मतलब सारे जितने भी कैच हैं जो विकेट के पीछे होते हैं उसके लिए आप ही जिम्मेदार रहे हैं ना?
जी।
अच्छा, उस समय जब आप खेला करते थे तो फिटनेस के लिए क्या करते थे?
फिटनेस के लिए मैम, अब गांव में रहते हैं तो सुबह से अपना क्रिकेट खेलने के लिए निकल जाते थे
जी।
उसके बाद कहीं टूर्नामेंट मैच होता था ना, तो वहीं 2-3 घंटे के लिए चले जाते थे, फिर तो शाम के 1 घंटा निकाल लेते थे उसके लिए। तो अपना शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम पौष्टिक आहार भी थे और अपना संतुलन बनाए थे मैम क्रिकेट में ऐसी।
जी जी जरूर, क्योंकि जो खिलाड़ी होता है वो फिट रहता है। और अपनी फिटनेस टिप में आप क्या देना चाहेंगे? आपने एक तो बताया कि संतुलन होना चाहिए खान पान में और एक्सरसाइज में, इसके अलावा जो अभी लोग घर में बैठे हुए हैं, बहुत सारा एक्सरसाइज बाहर निकल के नहीं कर पा रहे हैं, गाँव में शायद स्थितियाँ अच्छी हो, शहरों में अभी अभी कुछ खुला है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे?
मैम गाँव में तो उतनी ज्यादा परेशानी नहीं होती है क्योंकि सभी लोग कृषक हैं, खेती ही करते हैं सभी, तो फिटनेस एक तरफ से व्यायाम तो खेत में जाकर ही हो जाती है।
जी जी सही बात। अपने जो शहरी जो श्रोता साथी हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे, क्या करना चाहिए उनको घर में बैठ के
अपने एक घंटे समय निकालना ही पड़ेगा अगर अपने आप को तंदुरुस्त रखना है तो।
जी जी जरूर, बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो अर्पा रेडियो 90.8 FM पर आप सुन रहे हैं सप्ताह के श्रोता, और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं सावतपुर से ऋषि सेन जी। ऋषि सेन जी, आपने बता दिया कि आपको क्या पसंद है और आप रेडियो सुनते रहे हैं, अब हम जानना चाहेंगे आपके व्यवसाय के बारे में।
हम किसी है, खेती करता हूँ और समय निकाल कर मैं साइकिल रिपेयरिंग का भी काम करता हूँ। मैं साइकिल रिपेयरिंग काम जो मैं के रेडियो सुनता था ना, बिलासपुर आकाशवाणी से बहुत ही प्रभावित हुआ था मैं, इसी के चलते मैं साइकिल रिपेयरिंग का काम सीखा और अपने गांव में की व्यवसाय को अपनाया हूँ।
अच्छा, ये खेती में आप कितनी जमीन है आप लोगों की?
मैम हम लोग संयुक्त परिवार हैं तो 11-12 एकड़ खेती करते हैं।
संयुक्त परिवार हैं तो उसकी वजह से काम बढ़ जाता होगा, एक व्यक्ति पर ज्यादा भार नहीं आता होगा, ये फायदा होता है।
जी मैम।
और अपने गांव के बारे में बताइए।
मेरा छोटा सा गांव है, सोनात नदी के किनारे बसा हुआ है, 2500 जनसंख्या और सभी तो कृषि पर ही निर्भर है, सभी खेती करते हैं, वो 25% है बस सर्विस करते हैं, बाकी सब खेती पर निर्भर है। और सीधा में सभी चीजें हैं, स्कूल हैं, अस्पताल हैं।
अच्छा।
और जो अभी जो सरकारी योजना सरकार की तरफ से मिल रही है उसका भी कार्य पूर्ण चल रही है।
और अभी क्या बोया जा रहा है आपके गांव में?
अभी धान की रोपाई के काम चल रहे हैं।
एक एकड़ में कितना धान हो जाता होगा आपके यहाँ?
अभी एक एकड़ में मैम 25-26 क्विंटल आ जाते हैं।
तो अभी ऐसे गाँव में कोशिश की जा रही है जैसे गोठान वगैरह बनाने की, कंपोस्ट खाद तैयार करने की, वो वैसा कुछ हो रहा है आपके गाँव में?
जी 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 मैम।
गोठान के बारे में थोड़ा सा बताइए, हमारे जो दूर दूर के श्रोता हैं दूसरे प्रदेशों के, वो इसके बारे में नहीं जानते हैं।
गोठान में जो गांव के ही सभी किसानों के मवेशियों से गोबर खरीदी की है और वहां से जैविक खाद बना रहे हैं कंपोस्ट, और उसी खाद को अपने खेत में डालने के लिए सभी को दे रहे हैं।
अच्छा, जैविक खेती के लिए तैयारी की जा रही है और पूरी दुनिया में जो जैविक खेती से उत्पन्न जो फसलें हैं उनकी कीमत काफी ज्यादा होती है क्योंकि वो तमाम बीमारियां जो होती हैं हम डालते हैं कीटनाशक वगैरह से या रासायनिक खाद से, उनसे वो हमको बचाती है। तो इसका प्रयास हो रहा है, वो आपके गांव में भी हो रहा है।
जी।
आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आपने आकाशवाणी सुनने के बाद आपने एक और व्यवसाय चुना साइकिल रिपेयरिंग का, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि रेडियो आप कब से सुन रहे हैं?
जी मैम, रेडियो तो मैं वैसे 1991 से सुन रहा हूँ।
अच्छा, जब से बिलासपुर स्टार्ट हुआ?
जी मैम, और मैं बिलासपुर आकाशवाणी में 1991 से सुनता आ रहा हूँ और पत्र प्रेषित किया हूँ मैं 1995 में, तब से मैं लगातार सभी आकाशवाणियों में पत्र प्रेषित कर रहा हूँ।
अर्पा रेडियो कब से सुन रहे हैं?
अर्पा रेडियो मैम तो मैं 1 अप्रैल से सुन रहा हूँ, तो आप कार्यक्रम दे रहे थे और जब से अब ये श्रोताओं की कलम और ये सप्ताह के श्रोता अनीश के संग मितान मन की पसंद अर्पा शीर्षक के कार्यक्रम किसी दिन मैं मिस नहीं करता मैम, बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम दे रहे हैं।
और अपनी तरफ से कुछ सुझाव देना चाहेंगे अर्पा रेडियो में?
अर्पा रेडियो मैम तो 15 किलोमीटर के दायरे में प्रसारित कर रहे रेडियो से, और अगर थोड़ी सी रेंज को और बढ़ा देते तो मैम, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से तो बिलासपुर 30-35 किलोमीटर दूर है, तो थोड़ा से बढ़ जाता है तो अपने रेडियो से हम सुनने का मजा ही कुछ और हो जाएगा।
अच्छा, ऐप के जरिए आप सुन सकते हैं पूरी दुनिया में कहीं भी?
जी।
तो चलिए, बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आपको हमारे कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहे हैं और आप मिस नहीं करते। हम जानना चाहेंगे कि आपके आसपास कोई पर्यटन स्थल हो या कहीं घूमने जाने की जगह हो, ताकि हमारे जो और श्रोता है वो भी जाने कि आपके आसपास क्या है और वो क्या वहाँ उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं।
सावतपुर से कुछ ही दूर पर यूँ कहे जाए तो 5-6 किलोमीटर की दूरी पर ताला गांव है मैम। ताला गांव में जो भगवान शिव जी के और रुद्र अवतार
खनन
से निकले
हैं।
हाँ, वो देखने के बहुत ही बढ़िया है देखने में, और पर्यटक तो भाई बहुत आते जाते रहते हैं वहाँ भी।
जी जी, काफी प्राचीन मूर्ति है, और मेरे ख्याल से देवरानी जेठानी मंदिर भी वहीं पर है ना,
कहा जाता है। जी जी जी
जी जी जी, जी। हाँ,
और ये कि और ये है ना मैम, मतकुदीप है, मतकुदीप और ताला गांव के बीच में तो मेरा छोटा सा गांव है। अच्छा। तो मतकुदीप में भी वो 11वीं शताब्दी अवशेष निकले हुए हैं खनन के द्वारा, तो घूमने लायक तो बहुत ही बढ़िया जगह है वहाँ। तो द्वीप है और चारों किनारे में नदी के बीच में मतकुदीप है।
कौन सी नदी के बीच में है?
शिवनाथ नदी में।
और वहाँ जाने के लिए कैसे जाना होगा अगर पहुँच भी गए तो?
जी मैम, मतकुदीप जाने के लिए अपना रायपुर और में बिलासपुर वाला मेन रोड है, वहाँ से बैतलपुर गांव है छोटा सा, वहाँ से फिर 6-7 किलोमीटर के दूरी पड़ेंगे मतकुदीप के लिए, और सीधा रास्ता है, मेन रोड बना हुआ है वहाँ जाने के लिए।
अच्छा, और द्वीप पहुँचने के लिए?
द्वीप जो रास्ता पूरा द्वीप ही जाएंगे मैम।
अच्छा, तो नदी को नाव से पार नहीं करना?
नदी के नहीं, नदी के लिए वो पुल बना हुआ है ना।
अब पुल बन गया है?
जी मैम।
अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा लगा। वैसे धूमेश्वर महादेव के बारे में हमने सुना था, और श्री राम केवट मंदिर के बारे में सुना था, और 1911 के बाद वहाँ पर अवशेष मिले हैं ऐसी जानकारी हमने पढ़ी थी। और इतने अच्छे सुरम्य और हरे भरे जगह में, नदियों के बीच में आपका गांव है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और एकदम एक बार हम भी गए हैं मधुद्वीप, हमको आपके गांव की जो हरियाली है वो एकदम नज़र आ रही है। तो हम ये जानना चाहेंगे, जैसे बारिश का मौसम है तो इसमें नदियों में बाढ़ भी आ जाती है, तो उससे आपके जो गांव हैं और आसपास के गांव हैं उनमें परेशानी होती है?
जी मैम, बहुत ही परेशानी होती है मैम। आसपास के गांव तो डूब जाती है मैम, और मेरा गांव तो खैर नदी से 1.5 किलोमीटर के दूरी पर है, और गांव तक तो नहीं पहुंच पाता, लेकिन खेतों की फसल पूरी तरीके से चौपट हो जाती है।
तो फिर क्या करते हैं, जैसे गांव में पानी भर गया, घरों में पानी भर गया, तो उससे बचने का कुछ तरीका आप निकालते हैं?
अब बचने की तरीका तो ये दूसरे गांव में शरण लेना ही पड़ता है।
अच्छा।
और आवागमन का जो रास्ता रहता है वो भी बंद हो जाती है ना, सभी रोड पानी में डूब जाती है।
ज्यादा बाढ़ की वजह से आप लोगों को ये तकलीफें नदी के किनारे होने के कारण सहनी पड़ती है।
जी
जी, और जैसे घरों में है, मवेशी है, और घरों में रखा हुआ अनाज वगैरह है, जब पानी भरता है तो उसके लिए आप लोग क्या व्यवस्था कर पाते हैं?
अनाज के लिए मैम पहले से व्यवस्था करना पड़ता है कि बारिश हो रही है तो उसकी सुरक्षा अपने एक दो जैसे अपना टेबल वगैरह के ऊपर रखते हैं मैम।
अच्छा।
और तो फिर छत के ऊपर जब घर बनाए मकान बनाए हैं तो उसी में डाल देते हैं ताकि वो सुरक्षित रहे बाढ़ आने पर भी।
तो जैसे आपका पानी बाढ़ आ गई तो उसका मुआवजा वगैरह मिलता होगा?
मिलता है, लेकिन बहुत लेट में मिलता है,
समय लग। हाँ। तो ये सारी एक कृषि की जो समस्या है उससे आप मतलब जूझना ही पड़ता है आप लोगों को, आती है बाढ़ की या कम पानी की तो वो जूझना ही पड़ता है।
पहले क्या होता था मैम, अपना गांव है जो ना वो भगवान भरोसा कहा जाए, तो पानी जब ऊपर से गिरेंगे तभी फसल होंगे, इस टाइप का था। लेकिन यहाँ के जो किसान लोग जागरूकता दिखाए कि सभी किसान इकट्ठा होकर राशि इकट्ठा किए, और नदी तो किनारे में ही गांव के, तो उसका फायदा किस तरह से लिया जाए, तो सभी पैसा इकट्ठा करके वहां पर एक पंप बैठाए मैंने। तो पंप बैठाए तो यहां का जो 400 एकड़ जमीन है ना उसी में पानी की पलायु हो जाती है, तो एक अकाल की स्थिति यहाँ नहीं रहती है सावतपुर में।
बहुत ही अच्छी बात बताई आपने, हमें सुनकर बहुत अच्छा लगा। देखिए, सब मिलकर चलें तभी तरक्की होती है, आपने बहुत बड़ी बात कही है कि सारे।
और मैम जैसे, हाँ जी, जैसे गांव में हैंड पंप है और घरों में ट्यूबवेल रखे हैं, तो उसका पानी गर्मी के दिनों में लेवल डाउन हो जाती है, तो गांव के किनारे जितने भी तालाब हैं तो वहां पर पानी को हम भर देते हैं ताकि पानी का जो लेवल बना रहे
देखिए ये कितनी बड़ी बात है और बहुत छोटी सी बात है, अगर सारे लोग समझ जाएं कि जमीन में पानी का लेवल जो है वो नीचे नहीं गिरना चाहिए, वरना जमीन बंजर हो सकती है, चाहे वो नदियों के किनारे ही क्यों ना हो। आप लोगों ने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं और इसके लिए आप सभी को साधुवाद, पूरे गांव को हम बधाई देना चाहते हैं कि आपने ऐसी समझ रखी और सब मिलकर चले। ऋषि जी आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, हमें उम्मीद है हमारे श्रोताओं को भी हमारी बातचीत पसंद आई होगी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता और आज के हमारे श्रोता थे ग्राम सावतपुर पोस्टर गांव जिला मुंगेली से ऋषि सेन और इनसे बातचीत कर रही थी मीनू सिंह।
आप सुन रहे हैं अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।